ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो।
नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत मिश्रा फिर से सजाने आया हूँ कहानी चौक। क्षमा प्रार्थी हूँ, एक साल तक आपसे लगभग दूर रहा मैं। पिछले हफ्ते एक कहानी हाथ लगी जो हमारे मित्र राजेश ओझा जी ने लिखी है, और यकीन मानिए कि आज की भागती दौड़ती जिंदगी में आपको लगभग लगभग 4-5 दशक पीछे ले जाएगी ये कहानी, जहां पे रिश्ते जिंदा थे, मानवता जिंदा थी, आदर्श जिंदा थे, जीवन के सिद्धांत जिंदा थे, संस्कार जिंदा थे, और ये संस्कार सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थे। आज हम सभी न्यूक्लियर फैमिली में जी रहे हैं या जीने को विवश हैं, हर व्यक्ति घर से बाहर है, छोटा सा परिवार लेकर के आदमी अपनी रोजी रोटी में व्यस्त है। ये कहानी उस समय की है जब परिवार संयुक्त हुआ करता था, और इस कदर संयुक्त कि पूरा का पूरा गांव अपना परिवार लगा करता था। ये कहानी सुनकर के मैं तो अपने बचपन में पहुंच गया, और पूरा यकीन है कि ये कहानी आपको भी आपके बचपन में लेके जाएगी। तो वक्त जाया ना करते हुए शुरू करते हैं राजेश ओझा जी द्वारा लिखित मनोहरा बुआ।
दादी दादी, अरे दादी सुनो, मनोहरा बुआ आई है, वो भी कार से। अरे करिया बाबा के नीम के छांव में बैठी हैं।
ज्योति दौड़ते हुए अपनी दादी सुखवंती को बताने आई थी।
कौन मनोहरा बुआ?
सुखवंती ने अपने काम से बिना ध्यान हटाए ही लापरवाही से पूछ लिया।
अरे वही मनोहरा बुआ जिसकी कहानी आप हर नई नई ससुराल आने जाने वाली लड़की को सुनाती हो।
क्या कह रही हो?
सुखवंती आश्चर्य से हर्ष मिश्रित आवाज में चौंकते हुए बोली थी। दरअसल सुखवंती जब ब्याह कर आई थी 14 वर्ष की अल्हड़ी बालिका ही थी। ऐसे में 12 वर्ष की पड़ोस की लड़की मनोहरा जब अपनी नई नई भाभी से मिलने आई तो सुखवंती को बहुत अच्छा लगा। एक हम उम्र सखी पाकर जहां सुखवंती खुश हुई थी, वहीं अपनों के प्यार को तरस रही मनोहरा सुखवंती का मैत्री प्रेम पाकर आह्लादित थी। मनोहरा छोटी उम्र की अवश्य थी, पर बचपन में ही मां की मृत्यु और पिता की अकर्मण्यता ने उसे गंभीर बना दिया था। सुखवंती का विशेष स्नेह पाकर वह गदगद थी। जैसे ही घर के काम से फुर्सत मिलती आ जाती अपनी नई नवेली भाभी के पास, भाभी के तमाम कामों में हाथ बटाती। सुखवंती के हाथ की बनी कढ़ी मनोहरा को बहुत भाती थी। अक्सर कहती, भाभी कितना दिन हो गया आपसे कढ़ी नहीं बनाई। सुखवंती हंसकर कहती, अरे चल तू आज बना, मैं तेरे ससुराल तुझे कढ़ी खिलाने नहीं जाऊंगी। सुखवंती भले ही मनोहरा से 2 ही वर्ष बड़ी थी, पर अपनी अम्मा से जो भी सीख कर आई थी वह सब मनोहरा को सिखा रही थी। 2 वर्ष बीता, मनोहरा 14 की हुई। तभी एक दिन सुखवंती ने सुना कि मनोहरा के पिता द्वार पर बैठे हैं, मनोहरा के कहीं ब्याह कर देने की बात कर रहे थे। वे मनोहरा की तरफ देखकर मुस्कुराई थी। किशोर से युवा हो रहा मनोहरा का मन जहां नवजीवन की कल्पना करके रोमांचित था, वहीं घर गृहस्थी का कुछ विशेष सहूर न जानने का भय भी था। उसने सुखवंती से अपने मन की आशंका व्यक्त की तो सुखवंती ने मीठी झिड़की दी, अरे मैं हूं ना, सब सिखा दूंगी तुझे, मुझे देख, जब मैं विदा होकर आई थी तब तो मैं भी 14 की थी ना। और मनोहरा आश्वस्त हुई। मनोहरा के पिता करिया तिवारी गरीब ब्राह्मण थे। वैसे तो ऊपर वाले ने उन्हें स्वस्थ शरीर दिया था, पर ये थे घनघोर आलसी, काम धाम ना करते थे, सो गरीबी इनके सर चढ़कर बोलने लगी थी। वे सिर्फ दान दक्षिणा पर ही निर्भर थे। ऐसे ही एक दिन दक्षिणा में उन्हें अशर्फी मिली तो वे मनोहरा के ब्याह के लिए थोड़ा निश्चिंत हुए। उधमपुर के कैलाश शुक्ल का बड़ा नाम था, लक्ष्मी जी की उन पर महती कृपा थी, संपन्नता के साथ गांव जवार में अच्छा खासा रौब डाब था। शुक्ल का छोटा लड़का भी अब ब्याह लायक हो चला था। सुखवंती के ससुर के साथ करिया तिवारी मनोहरा का ब्याह कैलाश शुक्ल के लड़के से तय करने गए। तो कैलाश शुक्ल ने घर में परामर्श करके बताने को कहा, फिर भी करिया तिवारी दक्षिणा में पाई हुई अशर्फी देकर पांव छुए और चले आए। अशर्फी ने कमाल कर दिया, अरे अशर्फी सगुन में कौन देता है भला, जरूर ये मेरे स्तर के होंगे, कैलाश शुक्ल ने सोचा था और ब्याह करने की मंजूरी भेज दिया। सुखवंती के विशेष आग्रह से उनके ससुर ने गांव के और तमाम सम्मानित लोगों के साथ मिलकर तिलक भी अच्छी खासी चढ़ाए। सोही लेकर जब नाऊ को आना हुआ तो करिया तिवारी विचलित हुए। सुखवंती के ससुर से आकर बोले, भैया भैया इज्जत बचाओ, नौवा वहां जाकर सब पोलपट्टी खोल देगा। उफ भाई, जब तय कर आए हो तो इज्जत थोड़ी जाने देंगे। सुखवंती के ससुर ने आश्वस्त किया तो करिया तिवारी को थोड़ा ढांढस मिला। सुखवंती की सलाह से उन्हीं के यहां ही नाई को ठहराया गया, भोजन कराया और सुबह उसकी विदाई देकर उसे विदा किया। सुखवंती के ससुर का भी अच्छा खासा रुतबा था, 16 गोई बैल की खेती थी, करीब 1 बीघे में मिट्टी का बड़ा सा 2 मंजिला मकान था, दरवाजे पर बैलों के साथ मंदराजी भैंसे बैठी हुई पागुर कर रही थी। नाई के वापस पहुंचते ही कैलाश शुक्ल का पूरा परिवार उसे घेर कर बैठ गया। नए रिश्तेदार का अस्तर जानने को सब बेताब थे। अरे नाऊ ठाकुर, इन नए वाले समधी कुछ हैं हमारे अस्तर के कि नहीं, कैलाश शुक्ल ने पूछा। सुखवंती ने नाऊ की विशेष खातिरदारी की थी सो वो बड़ा प्रभावित था, बोला, मालिक झूठ न बुलवाओ, नए समधी आपसे 20 हैं, 20 ब्याहे में आप देख ली हो। कैलाश शुक्ल आश्वस्त हुए। इधर करिया तिवारी सुखवंती के ससुर के साथ गांव के अन्य लोगों के सहयोग से विवाह की तैयारी तो कर ही रहे थे, पर मन में एक आशंका बनी थी, सोही के नाऊ को तो कहीं भी ठहरा दो, कोई विशेष अड़चन नहीं थी। पर विवाह तो घर की वेदी पर होता है, घर के देवता तो वहीं होते हैं। विवाह का दिन आया। कैलाश शुक्ल पूरे लाव लश्कर के साथ बारात लेकर आए थे। गांव के छोटे लड़के का विवाह था। और उनके घर के छोटे लड़के का विवाह था। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी कैलाश शुक्ल ने, लेकिन द्वार पूजा के समय करिया तिवारी के दरवाजे पर पहुंचते ही सन्न रह गए। एक छोटा सा छप्पर और टटिया से घिरा हुआ आंगन, बस यही था करिया तिवारी का घर। छोटे से द्वार पर लगा बड़ा सा घूर कोढ़ में खाज की तरह कर रहा था काम। बरातियों में खुसुर पुसुर होने लगी। कैलाश शुक्ल फक इतनी बेइज्जती तो पूरे जीवन में नहीं हुई थी। नाऊ तलाशा जाने लगा। नाऊ स्थिति भांप चुका था, सो वो चुपके से भाग लिया था। दोस्तों, इसके आगे की कहानी अगले भाग में होगी। तब तक के लिए अपने मित्र प्रशांत मिश्रा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।